थोड़ी बदमाशियाँ, शातिरपना, तेज़, मतलब कोई जोक भी सुना रहा है तो जोक पे नहीं हंसना, और ऐसे ऐसे खुश होता रहता था। लोग एकदम पकड़ लेते हैं ये गलत बात है, ऐसा नहीं यार। शहरों में आते हुए भी शहर नहीं बदल पाया मुझे। कोई भी गेस्ट आए तो उनका रहा, अरे आओ आओ बैठे बैठे, पांच छह लोग आए चला दी, अरे यार फोटो तो खिंचा लो इसके साथ। खिंचानी है भाई, मन नहीं है तो मत खिंचाओ। हाँ जी नमस्ते ताऊ जी, हम दादाजी। अच्छा वो मैं दादाजी नहीं हूँ, मैं ताऊ जी वो वाला। अच्छा 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 ओह, तो ना वो मजाक बोलता है डोंट टच मी।
चलिए अब लेकिन झोला उठा के दिल्ली से मुंबई तो आ गए, मकबूल आपको कितने वक्त बाद मिली, मैं उस पीरियड की थोड़ी बात करना चाहूँगी। वो कितना लंबा वक्त था और कितना संघर्ष था उसमें?
वो तीन साल थे। हाँ, दो तीन साल का था और शुरुआत दो ढाई साल यहाँ पे आए थे, और उसमें तो बस ऑडिशन ही चलते थे कि यहाँ काम कैसे मिलेगा, स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा, हर जगह जाओ तो वही अनफिट अनफिट अनफिट। और तो बात होती थी कि रिक्वायरमेंट किस एज की है भाई, तो 25-26, मैंने कहा उसी एज पे हैं ये, कब अब नहीं, पर स्क्रीन का एज अलग है, स्क्रीन एज अलग होती है। तो आपकी स्क्रीन एज, मैंने कहा मेरी स्क्रीन एज क्या है, तो यार आपकी स्क्रीन एज ना क्लीनशिप में आप 17 पे आ जाते हो, 17 तक कर सकते हो। मैंने ठीक है, तो ये स्क्रीन एज हर जगह लागू होती है, हर जगह अब नहीं अलग अलग होता है, पर ये स्क्रीन एज है आपकी। फिर दूसरी जगह गया जहाँ 17 साल के लोगों की जरूरत थी, वहाँ चला गया, भाई ये स्क्रीन एज वो नहीं नहीं, बट यार फिर पता चला और छोटे लड़के आ रखे वहाँ पे, मैंने कहा यार इससे छोटा नहीं हो पाऊंगा भाई, ये तो 15-16 साल के 12 साल के 13 ऐसे ऐसे लड़के आ रखे हैं, तो यार ये समझ में नहीं आया पहले कि कहाँ फिट हो और कहाँ फिट नहीं हो, स्क्रीन एज ये होती है। तो अभी क्या है, उसी सेम उस पर हूँ तो अभी हर जगह फिट हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी फ्लेक्सिबल एज है, ये किस एज पे आता हूँ, किसी में भी 25 to 40 सारे रोल कर सकते हो, थैंक यू, कोई रुकावट कोई नहीं।
वो जो 2.5-3 साल मुंबई में संघर्ष के थे, वो हम जिससे भी बात करते हैं वो एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, क्योंकि बहुत लोग वादा तो कर देते हैं हाँ अगली फिल्म में चांस देंगे, पैसे बहुत आपके पास शायद नहीं आ रहे होंगे, घर से ही सब सपोर्ट होगा, वो थोड़ा बताइए कैसे मैनेज कर रहे थे आप, डिड यू गेट एंग्री?
हाँ उसमें ये होता था कि घर से भी उतना कुछ वैसा सपोर्ट नहीं होता था पैसे का, मतलब वो है ही नहीं, मतलब ऐसे करके कि वो खुद ही यहाँ पे करना पड़ता था, कुछ ऐड कर लिया, कुछ एपिसोडिक कर लिया हल्के फुल्के या जो भी है। कुंदन शाह जी तो उन्होंने ऐड वो बना रहे थे एक HP गैस का, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह हुआ और मुझे और विजय भाई को लिया, विजय राज, हम दोनों उस ऐड में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा उस ऐड की रिक्वायरमेंट आई, तो पहली बार उन्होंने उतना पैसा वो नहीं आया था, लेकिन दूसरी बार तो हल्का सा कुंदन जी का इशारा आ गया था, कहीं मिल गए थे, मांग ले जितना मांग सकते हैं। तो उस ऐड से भी काफ़ी पूरा साल का जो था कुछ उधार थे किसी का, ये ले भाई ये पकड़, भाई ये पकड़ो, ये आपका
उधारियां ली
सब सब। हाँ तो दोस्तों का वही होता था, जिसका डिले होता था उसका घर छोड़ना पड़ता था कि भैया उधार, अच्छा नहीं यार टाइम लगेगा तो 1-1.5 महीना जो भी है, तो उतना वो नहीं होता था। फिर पता चला कि उसके चक्कर में मैंने देखा कि आपस में ही दोस्त लोग, कुछ ही दोस्त अलग अलग उसमें, वो अपना जो थॉट है या अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस उधार की आड़ में वो निकालते थे। तो वो जब चुभा मुझे, मैंने नहीं 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 ये नहीं, बराबर की सोच का अधिकार नहीं है यहाँ पे, उसके पास जिसके पैसा नहीं है, जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, उसकी बराबर की सोच मानी नहीं जाएगी, उसकी अच्छी सोच यहाँ मानने नहीं देते लोग। तो पहले वो मैंने लाइफ में कर लिया कि नहीं उधार किसी का नहीं रखना है, कुछ भी है कुछ भी हो जाए। तो जब और वही कंट्रास्ट होता था कि यार एज एन एक्टर मैं सोचता था कि इतने बड़े बड़े नाटक करके आऊँ यहाँ पे तो लोग, मैं छा जाऊँगा जाते ही या कुछ कर दूंगा या लोग समझेंगे, कोई नहीं समझता यहाँ पे, यहाँ आपको खुद समझाना पड़ता है। वो जो पैसे आप दे नहीं पा रहे उसकी वजह से आपका पर्सनल जिंदगी का व्यक्तित्व, जब ज़मीर लोग सड़कों पे डाल रहे हैं, उस ज़मीर को फेंक रहे हैं, तो फिर एक्टर का ज़मीर कहाँ से बचेगा? तो पहले अपना ज़मीर बचाओ, उसके बाद एक्टर का बचाएंगे। तो पहले जैसे भी कहीं से पैसा आता था बहुत सारा, पहले मेरे भाई किसका है किसका, तो मैंने लाइफ में कर लिया कि नो उधार किसी से भी, कोई उधारी नहीं होगी, ये पकड़ो वो पकड़ो, तो वो रखा था और सबके वापस किए। फिर ये यहाँ पे फेमस भी हुआ, वो मैंने वो क्या कि भाई उसका जैसे उसके पास पैसा है, कोई बोलता था यार उसको पैसा कब आएगा, जिस दिन आएगा उसी दिन एक मिनट में तेरे पास कॉल आएगा, तो ये अच्छा ऐसे गारंटी करें, हाँ ऐसे गारंटी, तो वो हो गया था। कट कट करके वो सब हटाया, तो पैसे ने थोड़ा सा हिलाया, और उसमें दुख यह हुआ कि पैसे की वजह से दोस्तों को जब बदलते हुए देखा मैंने, तो वो थोड़ा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं यार, दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी मतलब दिल्ली में हमने बहुत बहुत इमोशनली हम एक दूसरे के जानते थे, पर इसमें ये चीज़ इतना ओके ठीक है। तो फिर वो कमाया, फिर वो हैरान रह गए, हाँ भैया तो मैंने कभी भी कमा दूंगा यार, इसके लिए थोड़ी है बड़ा सोचने। एंड फिर जब वो फिल्म फेयर आया तो फिर वो पूरा गैंग वापस आ गया, तो वो सब ने अपने क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड मेरे पास फेंक दिए थे।
बट क्या आपके लिए वो रिश्ता फिर सेम रहता है?
हाँ, मेरे लिए फिर से सेम है। मैंने कहा रियलाइजेशन है वो उस समय का,
एक नहीं तो लोगों को लगता है अब वो बात नहीं आ सकती।
नहीं 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 नहीं, वही है, वही रिश्ता है, वही रिश्ता है, क्योंकि अब सब फिर काम पे है, सब अपने अपने फिल्मों में काम कर रहे हैं, राइटिंग में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, सब सब आ गए।
तो आप किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहे?
नहीं नहीं, किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से भी नहीं। छोटे छोटे मनमुटाव होते रहते हैं बस वो, लेकिन वो 5-6 महीने के लिए, क्योंकि कई बार वो एनर्जी का काम करते हैं इसलिए, अदरवाइज वो नहीं है वो। और फिर आप समझते हो जब हर एक की प्रॉब्लम्स नहीं यार पता चलते, नहीं नहीं तो यहाँ पे हर एक की प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, जब आपको वो एंगल देखना आ जाए तो आपका कोई दुश्मन नहीं है।
अच्छा वो इंसिडेंट क्या हुआ था कि आपके पर्स में तो एक पैसा नहीं था लेकिन आपको गुरुद्वारे में एक नोटों से भरा हुआ वॉलेट मिला था, वो क्या था?
वो ये था कि एक दोस्त है हमारा प्रीतम, जो रेडियो जो कि भी है अभी, तो हम स्ट्रगलिंग दौर में साथ ही रहते थे, तो वो बाइक पे जा रहा, कह रहा है यार कुछ नहीं हो रहा यार, इधर भी नहीं हो रहा उधर भी नहीं हो रहा, कहीं भी जाओ यार ये है वो है, चल मत्था टेक के आते हैं। मैंने कहा वाहेगुरु के, मैंने चलो, तो वहाँ से गए बाइक पे ले गया वो मुझे और मनीष नगर गुरुद्वारे पे। अच्छा अच्छा, तो हम बाइक खड़ी की, वो आगे गया, दो कदम आगे रखे उसके, जस्ट मैंने देखा, मुझे लगा इसका पर्स गिरा, तो मैंने उठाया ऐसे करके नोटों से भरा, मैंने कहा इसका तो नहीं है, तो मैंने देखा कार्ड, अरे बाप रे ये कौन है। तो मैंने चलते चलते ही मैं उससे कह रहा हूँ देख तुझे तो हमारी हालत पता है, और उमाल उमाल निकाल, हाँ और ऐसी हालत में पाई पाई को मोता आ जाए, ऐसी हालत में अगर तुझे एक नोटों से भरा हुआ पर्स मिलेगा तो क्या करे, ओ रख लूँगा यार मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर वो गुरुद्वारे में मिलेगा तो, कह रहा नहीं तू तो वापस करूँगा मैंने, है ना, तो वही है ना, तो ये जो है। एंड वो शॉक्ड हो गया, कह रहा ये एक मिनट किसका ये, मैंने वो यहाँ पढ़ा, वो क्या गारंटी है लोग देंगे, मैंने कहा नहीं गारंटी है, गुरुद्वारे का है, कमेटी वाले हैं उनको देना है। अच्छा तो फिर वो भी आया कि इतना, तो हम दोनों गए उनको वो दिया जी ये किसी का गिर गया, तो वो उस पर वो हो गया, नहीं नहीं बट कॉल अभी करेंगे आप, वो जी अभी करते हैं, वो कॉल किया उनका जिनका था। वाह, फिर वो बाइक पे आया तो बहुत ही उस पर रहता था, यार ये वाहेगुरु तेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है वाहेगुरु, कसम से यार ये डेरिंग है। तो मैंने कहा था वो अलग ही अलग, ये डेरिंग है बस, ये डेरिंग है यार, हर एक के पास नहीं होती है। कम ऑन यार, दिल जीत लिया यार, आ यार आज 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 तेरा भाई दिखाता है, उधार पे देखा आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और ना तो करके आज ये आज पार्टी होगी जो भी है। तो उस तरह का अभी भी हम हंसते हैं दोनों के दोनों, कहीं मिलते तो वो किस्सा उस पर। तो ये है कि उस पे से क्या होगा, एक आदत और बन जाएगी एक अजीब सी, है ना, कि अगर आपने रख लिया तो आपको पता है कि यार ज़रूरत के टाइम पर आपने इस्तेमाल कर लिया था वो, है ना, तो अभी आपकी स्ट्रेंथ कहाँ रही, तो आपकी स्ट्रेंथ आपको वहाँ होती है जहाँ कोई नहीं देख रहा,
क्या बात है,
वहाँ पता चलती है आपकी स्ट्रेंथ,
सही बात,
जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, तो आपको तब पता, जब आप अकेले में हो तब हो आप असली स्ट्रांग और वीक। बट वो जो मुफलिसी वाला वो रहता है ना क्राइसिस वाला, उसकी आदत पड़ जाती है लोगों को, कसम से बहुत मज़ेदार है वो ठीक है, लेकिन आप तब उस पे आते हो एग्रेसिव उस पे जब आपको लगता नहीं कुछ सॉलिड करना, कुछ और करना है, तब आप आते हो, अदरवाइज बहुत सारी बस्तियां बनी हुई हैं जो उस क्राइसिस वाले रस को एंजॉय करते हैं अभी भी, ये भी है वो पार्ट बन जाता है,
एक आध फिल्म कोई रोल मिल गया,
हाँ, कुछ हो गया, हाँ सेम रूटीन ये चल रहा है वो चल रहा है, एंड है वो उस क्राइसिस में भी बहुत मजा था, उसी डेयरिंग का थोड़ा सा जोश मनाते थे हम, ये है वो है, क्या क्या छोड़ा है ये, अब उल्टा होने लग गया था कुछ, फिर ये जस्ट मनाने लग गया था बड़े बड़े रोल छोड़ के, ये सब मेरे पास थे ये सब लेकिन मतलब कोई मलाल नहीं रहा किसी चीज़ का कि ये क्यों छूटा और वो क्यों छूटा, मलाल नहीं रहा, सीखते हैं। एंड प्लस कुछ जो आपका प्लेज ने जो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स किए हैं उन वजहों से एक आपका एक वो रहता था, नहीं यार कुछ सॉलिड करूँगा यार, ये सब करने नहीं आया हूँ, ये सब ये सेल्फियाँ खिंचवाने नहीं आया हूँ मैं इनके साथ, है ना, मैं एक्ट करने आया हूँ। सेल्फियाँ पूरी दुनिया सेल्फी में लगी हुई है, ये देखो ये हमने ये नहीं, नहीं यार एक्ट करना और कुछ सॉलिड सा करना है, कुछ कि लोग कहें यार कि हाँ यार एक एक्टर था, ये एक्टर था, ये अलग था कुछ, है ना, अपनी उससे जितना भी ढूंढ सकते हैं कि एक एक, एक अलग कुछ जो इन्वॉल्व रहा, जिसने अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कुछ भी है। मैं रियल लाइफ में कैसा भी हूँ, बड़ा अस्त व्यस्त टाइप का रहता हूँ, लेकिन जब काम आता है तो फिर मेरे से प्रोफेशनल कोई नहीं है। ये सब लोग जितने भी मेरे डायरेक्टर्स हैं ये भंगड़ा करते हैं सब लोग, कि आनंद जी बोलते थे ये तू मेरा स्ट्रेस बस्टर है हर जगह था, तू आज तेरा मेरा मन करे सुबह 9 बजे से तेरे शॉट लगाऊँ तो ये आनंद जी का ही रहना था। हाँ ठीक है। तो और मुझे ये बड़ी खुशी है कि जो भी मेरा डायरेक्टर है मैं उसके विजन में उतर पाया और कुछ उसको अच्छा ही दिया है, कि वो बहुत जब भी देखते हैं कि हर डायरेक्टर का स्माइल आता है मुझे देख के,
तो ये मेरे ऑडियंस का भी आता है,
ऑडियंस का भी। मैं पहले डायरेक्टर का आना ना उसी दौरान उसमें कि हर डायरेक्टर का ये वाला डार्लिंग ये जो चलता है वो एक मेरी कमाई है, कि कोई भी वो नहीं है जो ना खुश रहा मेरे से या कुछ वो किया, हर बंदा मतलब ये एक कमाई है।
हर स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह कि आपकी जिंदगी में वो दिन आया था जब लगा नहीं हो रहा आप चलो दिल्ली वापस चलते हैं, कम से कम पेरेंट्स के साथ तो रहूंगा।
नहीं नहीं
कभी नहीं?
नहीं नहीं, फिर एक आदत पड़ जाती है, इस शहर की एक नेचर है इस शहर का, ये ना आपको अपनी जड़ों में वो अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है ये शहर, आप आदि हो जाते हो यहाँ के। कई बार सोचा मैंने कि पहाड़ों पे रहता हूँ कुछ दिन, लेकिन 3 दिन में ही आपको लगता है कि ये नहीं यार ये पेस जो है अब आप इसके आदि हो चुके हैं।
नहीं बट काम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें।
हाँ बट फिर मिलेगा भी यहीं पे, हो सकता है ये एक एक इनसिक्योरिटी ये रहती है ना कि आप स्टेशन तक भी गए ना तो भी कॉल आ जाएगा आपको, ट्रेन पकड़ने भी गए अरे कॉल आ गया यार क्या भाई चढ़ूँ कि नहीं, ये सब भी है, ये सब पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो एक ही रहता है, जबकि होता नहीं था इतना, कोई मिलाता नहीं था, कोई मिले आपको ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट ही देने पड़ते थे, बट लेकिन वो इनसिक्योरिटी है कि यार यहाँ से कॉल आया जरा देख लो, रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है। आप उस एक उस पे ना कि फोन आएगा और एक पॉजिटिव होप के साथ
उम्मीद पे लोग सालों काट देते हैं,
सालों काट देते हैं।
जब इतने संघर्ष के बाद मकबूल के लिए जब कॉल आया जो भी हुआ वो आपको द मोमेंट वो आज भी याद है क्या, वो कैसा था, यकीन हो रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ फिल्म?
नहीं नहीं हाँ उसमें मकबूल के लिए जब आया है तो उसमें क्या था कि मैं सो रहा था, खाना खाया हमने और मैं और एक दूसरा दोस्त विपुल तब कहीं और था, मैं और एक दूसरा दोस्त राजीव, तो हम दोनों सो रहे हैं और रात दिन के 2:30 बज रहे हैं और वो कहता है कि यार कहीं कास्टिंग चल रही है, मैंने पता नहीं यार तू जाओ कास्टिंग, हम सिर्फ सेलेक्टेड जगह जाते हैं और कोई काम नहीं हमारे पास, जो है ना वो इनविटेशन आते हैं बड़े बड़े डायरेक्टरों से, हम इधर उधर नहीं जाते। तो कह रहा है यार मजाक मत कर का, तो मैंने कहा यार उसने कहा और वही बोल रहा है यार वो विशाल जी के यहाँ कास्टिंग चल रही है और वहाँ तो तेरे एक दो दोस्त भी हैं हनी हैं और नहीं हो गई वो कास्टिंग यार वो 2 महीने से चल रही है अभी तक कास्टिंग होगी क्या, अजीब बातें करते हो तुम। मैंने कहा हमें कास्टिंग की नॉलेज तब होती है जब पूरी फिल्म सेकेंड हाफ हो चुका होता बन चुकी होती तब पता चलता है यहाँ कास्टिंग चल रही है, पहले ये होता था पूरा
मिशन टाइम भी नहीं आता
पूरा क्रू शूट पे। हमने कहा हमें पता चला कास्टिंग चालू हुई, करा वो सेकेंड शेड्यूल चल रहा है तो फिर ऐसे था। तो मैंने कहा हो गई होगी यार 2 महीने से वो हो गया वो, करे यार प्लीज अगर एक हो जाए कुछ यार करवा दे। मैंने कहा फिर डील क्या है? डील रात का खाना मैं बनाऊंगा। मैंने ठीक है तो चल, लेकिन यार तू टेस्ट ही नहीं बनाता यार वो, मैंने कर नहीं मैं बाहर से खिलाऊंगा। मैंने कहा ओके चलो, तो वो फोटोग्राफ्स उसने लिए 5-6 और मैं गया सिर्फ मिलाने के लिए दोस्त हैं ऐसे ही, कह रहा तू भी रख ले फोटो, मैंने ऐसे ही उठाया अच्छा ठीक है चल, पर मैं देना नहीं तेरा। एंड वहाँ गए और मिलाया कि यार वो हनी से मिलना है, हनी वो आया हनी हाँ यार मेरा दोस्त है, अरे दोस्त छोड़ तू लाया फोटो, मैंने कहा नहीं यार मैं उसको मिलाने आया भाई, मैं मेरे को वो नहीं करना है, मैं उसके लिए आया हूँ, उसको कास्टिंग चाहिए। या तो कास्टिंग हो गई ना, हाँ कास्टिंग तो हो गई पर एक रोल है यार, एक एक्टर चाहिए उसके लिए। मैंने ये भी एक्टर है ना, हाँ, और दोनों फिट होते थे मतलब जो है। उसने कहा हाँ दे दो भाई, उसने भी फोटो लिए और दिलाए, मैंने कहा हाँ वो। फिर पता चला विशाल जी बाहर है, और तब तक मैं विशाल जी से मिला नहीं था, मैं जानता था। और मैं बैठा हूँ और हम दोनों बैठे हैं, वो हनी और वो दरवाजे के सामने से खड़े हैं, और उनका स्माइलिंग फेस विशाल जी का, मैंने कहा होगा कोई ऑफिस का बंदा कोई होगा। एंड बगल में देखा वहाँ पे उनका फोटो लगा हुआ है विशाल जी का, तो मैंने कहा विशाल सर, उनका अरे बाप रे, मैंने कहा अरे सर आप, हाँ हाँ हाँ। फिर वो बोले कि यार दीपक यार एक रोल है और ऐसे बड़ा प्यारा सा, सॉरी यार डायलॉग नहीं है, बट यार मुझे ना उस जगह वो बॉडी गार्ड नहीं चाहिए, मुझे बंदा चाहिए उसका राइट हैंड चाहिए यार, पर एक्टर चाहिए उसमें एक्टर चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक है। तो यार वो मेरा जो दूसरा दोस्त था उसकी बॉडी ऑडी थी, तो कह नहीं उसमें मुझे बहुत लीन तेरे जैसा तू चाहिए। मैंने कहा हाँ तो मेरा हो गया। फिर आज तक वो बोलता है मेरी वजह से तेरा करियर बना है, सॉरी मेरी वजह से। मैंने हाँ
बात तो सही है। चलिए मैं आपको एक मैसेज सुनवाती हूँ।
दीपक बहुत बहुत मुबारक जो सक्सेस तुमने पाई है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और तुमने जो काम किया था ओमकारा में वो मैं आज जब भी देखता हूँ वो फिल्म, मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे बिना वो फिल्म अधूरी रहती। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद तुमको मैंने कभी पहले मेंशन नहीं की ऑडियंस के लिए भी, कि मकबूल में भी दीपक ने एक्चुअली मेरे साथ 3 फिल्में की हैं, मकबूल, उसके बाद ब्लू अम्ब्रेला और उसके बाद ओमकारा। तो मकबूल में ये बड़ा छोटा सा किरदार था दीपक का, जहाँ वो मकबूल के साथ थे। तो पंकज कपूर जी ने मुझे एक बार बोला कि यार ये लड़का जो है ये बहुत ही अच्छा एक्टर है, इस पे नजर रखना, ये बहुत आगे जाएगा। और तुमने वो प्रूव किया, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर हो। और एक बात ऑडियंस को मैं और बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली दीपक की जो वाइफ है लारा मेरी एसोसिएट डायरेक्टर थी, मेरे साथ काम करती थी ओमकारा में, और ओमकारा के सेट्स पे इन दोनों का इश्क शुरू हुआ, और ओमकारा के बाद इन दोनों की शादी हुई। तो मैं लारा और दीपक को बहुत मिस करता हूँ अपनी जिंदगी में, अपने काम में। एंड दीपक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू अगेन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर कैरियर।
ओह इट्स सो स्वीट सर, थैंक यू। अरे अरे थैंक यू। ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, मतलब के मतलब वही होता है कि कई बातें हम फन में निकाल देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको रुला देती हैं अंदर से ना, बहुत वो कर देती हैं। मतलब ये रिस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच श्री जय। मतलब
एक चीज़ मैं आपके बारे में समझना चाह रही हूँ, इतना संघर्ष किया, और जब कोई इतना संघर्ष करता है तो ऐसा लगता है भाई जो काम मिले कर लो शुरू। बहुत एक्टर्स की ये भी अप्रोच होती है, ये छोटा बड़ा जो मिले फिलहाल करते जाओ कि नोटिस में रहे। आपके बारे में मैं जहाँ भी पढ़ रही थी, जो थोड़े बहुत इंटरव्यूज देखे, उसमें सब में ये था कि खूब काम आपने रिजेक्ट भी किया। ऐसा कोई क्यों करेगा जिसे काम की ज़रूरत है?
नहीं, अच्छे काम की ज़रूरत है, काम तो बहुत है। काम यहाँ पे ऐसा है कि कोई एक्टर खाली ना बैठे, इतना काम है। और बट एक चीज़ ये है कि एक ही जैसा काम करेंगे तो नीरस हो जाएंगे, मतलब ये भी है ना कि मैं एक एग्जांपल है बड़ा प्यारा सा, कि आप एक हवाई जहाज़ की तरह हो एक एक्टर, कि उसको खुद को भी उड़ाना है और पैसेंजर्स को भी उड़ाना है, साथ लेके जाना है। मतलब ऐसे ना, ऐसे नहीं है कि पैसेंजर पूरे बिठा लिए और टायर पंचर है, तो अपने इंस्ट्रूमेंट कैसे वो शार्प करेगा, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पब्लिक का भी ध्यान रखना है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है एज ए क्रिएटिव पर्सन, कि यार नहीं यार कुछ और सोचा था मुझे, कुछ शब्दावली अलग है, न्यू वेव ऑफ सिनेमा मुझे पता है होती है यार, कुछ होती है ना, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरा उस पर यकीन है, मेरा कमर्शियल पे भी यकीन है, हर सिनेमा पे यकीन है जो दिल से बनाया गया है उस पर है। तो लेकिन अब सिर्फ कॉमिक नहीं हूँ, यहाँ पे कॉमेडी हिट हो गया तो लोगों की रिक्वायरमेंट हुआ आगे,
जब वो पप्पी जी जैसे रोल सब जगह आने लगे। हाँ,
दिल्ली में आप देखेंगे तो मैंने जितने भी नाटक किए सारे सीरियस नाटक हैं, सारे के सारे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे इमेज का खेल है, तो मैंने कहा नहीं ये इमेज बार बार तोड़नी है मुझे, तो मैं हर बार अपनी इमेज तोड़ता हूँ और उसी तरह का कई बार बिहेवियर भी वैसे ही रख लेता हूँ कि अब बहुत सीरियस वाला हो गया, अब थोड़ा वो चाहिए, हाँ कुछ अलग तरह का वो पेश करना है, तो मैं उस जोन में जीने की कोशिश करता हूँ, रहता भी हूँ कुछ जानबूझ के, है ना। तो वो है कि नहीं अब बहुत फन हो गया, अब एक कोना पकड़ना है, मतलब एक वो वाला बीच के किनारे वाला, पत्थरों के बीच में से वो वाला रखना है, पार्क में बैठा हुआ है कुछ है या वो ये पढ़ रहा है सिर्फ कौन, तो वो चीज़ें वो रहते हैं। लेकिन उसी में ये आता है कि आप अगर आप काम छोड़ रहे हो तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट इसलिए हो कि आप रोज़ सीख रहे हो, तो आपको मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो वो वाला मामला, तो इस वजह से तो जब आपके अंदर से शुरुआती दौर में ये हुआ था कि जब पैसे ने यहाँ पे बड़ा वो संबंध बिगाड़े दोस्तों से ये वो तो यह सब के लिए, तो मैंने आज तक पैसे को सेकेंडरी रखा हुआ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता मेरी लाइफ में पैसा कुछ भी है ना। मतलब एक जोक भी है कि पैसा मुझे कुछ नहीं समझता, मैं पैसे को कुछ नहीं समझता, दैट्स इट सिंपल। तो ये जो चीज़ है, तो कई दोस्त बोलते भी हैं कि तेरे को क्या तड़ी मिलती है यार, ये सारी फिल्में मना करके इतनी बड़ी बड़ी फिल्में तड़ी क्या मिलती है तेरे, इसमें क्या है। तो मैंने कहा तड़ी है यार कि वो मुझे एक इमेज में बांधना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके सामने झुकूं और वो करूं और कॉम्प्रोमाइज़ करूं और बात करूं, हाँ कर लो करना है हमसे बना के रखने दो। नहीं मैं ना इसलिए करता हूँ कि यार बराबर की सोच को तवज्जो देता हूँ, तो वो जब कभी एक्ट करते हैं वो लोग सामने, तो ये होता है कि मैं बराबर की सोच से एक्ट करता हूँ, वो नहीं होता कि तब मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ कि कोई भी आ गए, नहीं आप अपने किरदार में रहिए मैं अपने किरदार में रहता हूँ, आप एक्ट करते हैं। तो वो जो इंटिमिडेट हो जाते हैं लोग ना कि बहुत सारे, तो वो उस चीज़ से स्ट्रेंथ ये मिलती है कि अपने जो जो किरदार आप ढूंढ रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं, आप बना रहे हो ढूंढ रहे हो जी रहे हो उस पर कुछ कर रहे हो, तो उसको कन्विक्शन ये चीज़ें देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश है इसमें, जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो स्ट्रेंथ है जहाँ जहाँ से मिलती है वो काम आती है, वो आपको लेयरिंग से भरी हुई फिर परफॉर्मेंस में तभी आप दे पाते हो कि नहीं यार ये कुछ अलग किया मैंने, और आपको खुशी होती है। लोग आपकी 50 चीज़ों की तारीफ करते हैं लेकिन आपको पता होता है ये क्लैरिटी रहती नहीं, 50 नहीं 2-3 मैंने ये किए हैं बाकी वो नहीं, तो ये क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपने 200 नहीं किया, आपने वो 2-3 चीज़ें किए उनसे खेलोगे। ये क्लैरिटी है कि हाँ मुझे पता है मैंने यहाँ पे 2 चीज़ की है और यहाँ पे नहीं किया या वो है, इम्पैक्ट कुछ हो रहा होगा, लेकिन अगर वो मुझे पता नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने गलत क्या किया है, गलत किया है तो फिर मैं कैसे करूँगा, तब तो मैं अपने ही उसमें जिए जा रहा हूँ जो भी।
और लोग उस समय बहुत वाहवाही कर देते हैं, कुछ लोग उसमें खो जाते हैं उस तारीख। चलिए एक मैसेज एक ऐसे इंसान का, जैसे आपने हमें इंतजार करवाया इंटरव्यू के लिए, आपने इनको भी इंतजार कराया था।
ओह दीपक तुम्हें याद है धनुवेट्स मनु के टाइम पे तुम अकेले वो एक्टर थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कराई थी। माधवन ने हाँ बोल दिया था, कंगना ने हाँ बोल दिया था, पर दीपक डोबरियाल हाँ नहीं बोल रहा था और मैं दीपक डोबरियाल के बिना ये फिल्म बनाना नहीं चाहता था। पर थैंक यू सो मच दीपक ये पप्पी का किरदार निभाने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे मेरी फिल्म खिल गई, पर इसलिए कि मेरे जैसे डायरेक्टर को एक सेंसिटिव ह्यूमर की समझ तुमसे आई। थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि ह्यूमर में एक बहुत बड़ा इमोशन होता है, शायद उसी से ही मेरी एक छोटी सी पहचान बनी। थैंक यू दीपक फॉर एन एक्टर लाइक यू बीइंग देयर, थैंक यू सो मच।
अरे यार अब ये प्यार है, मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ तो प्यार का समंदर है आनंद जी, है ना, मतलब प्यार ही प्यार लुटाते जाते हैं, आ जा सब स्वीट हार्ट। मतलब
फिर इनको भी आपने इंतजार कराया, बताइए वो कह रहे हैं कि माधवन ने हाँ कर दिया, कंगना ने
अब उसी में वही था ना कि अब क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ल्ड सिनेमा का भी असर आता है, हॉलीवुड का, वहाँ पे हावी बारदेम कुछ कर रहा है, हाँ वो चल रहा है, और यहाँ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन चल रही है, जोकर आ रहा है, ये उनका हम ये एक अपना वो रहता था यार। मैं उन सर से बोला, आनंद सर से भी मैंने, सर क्या मैं शादी के पंडालों वाला हूँ क्या, मैं पंडित बन जाऊँ क्या, शादियाँ कराता रहूँ क्या, वहाँ देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, यार अब क्या करें यहाँ की जरूरत, तो उनकी बड़े क्यूट यार है अब, तू अलग तरह का पंडित बन जा। मेरे को अच्छा तो पंडित कहाँ है, वो चैलेंज करते थे बड़ा क्यूट से, कहाँ है पंडित, ये है वो है, फ्रेंड है और अलग है। और वो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी एक्टर को, इमोशनल उस पर बंदा दिल से बन जाता है। कहाँ से आया होगा पप्पी, सोच क्या लगता है वो इन लोग। तो मैंने कहा सर अब रुलाओ मत, हाँ ठीक है ठीक, मैं कर रहा हूँ जो भी है। एंड उसमें ये हुआ कि इतना क्यूट सा कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था कुछ कुछ, तो धीरे धीरे करके वॉक ये सब चल रहा था। और उसके बाद उनका एक दिन मैसेज आ गया, और तब मैं मना कर चुका था उनका, आ जा। मैंने कहा आ रहा हूँ और मैं पहुँच गया। तो ये उनकी जो कदर है, ये कोई बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो ये जानते हैं या इस चीज़ पे यकीन रखते हैं। नहीं यार मुझे वो एक्टर चाहिए जो बोरीवली में बैठा हुआ है, फ्लैट नंबर इसमें इस एरिया में, वो एक्टर चाहिए ये जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि मैंने इसका कुछ देखा है। तो वो जो कदर है कि आसपास तो बहुत हैं लेकिन यार वो कुछ और करेगा, वो कुछ और सुर है मेरी फिल्म
वो के। ये कह रहे, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके बिना वो फिल्म नहीं बनाना।
ये तो हाँ, ये तो बहुत ही क्यूट उनका वो है, हमेशा से वो रहा है और वो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा बोलते हैं कि 5 बार मना करेगा क्या किसी फिल्म को, ये तेरा रिचुअल है, है? तो मेरे तो फूक खिंचाई भी करते हैं वो, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, मतलब डार्लिंग है। तो चंदन में हम रिएक्शन देख रहे थे, पब्लिक रिएक्शन, तो वहाँ पे ऐसे करके खड़े हो गए, देख रहे ना अंदर क्या हो रहा है पब्लिक। हाँ बात नहीं करूंगा तेरे से, नहीं। तो बहुत वो था हमेशा, मतलब
माधवन के साथ केमिस्ट्री
बहुत बढ़िया। तो उनका तो भाई वाला है, मतलब पप्पी पे सबसे ज्यादा वो खुश हुए थे जब सिनेमा में मैं, मैडी भाई उनकी वाइफ भाभी और शैलेश प्रोड्यूसर, हम चंदन की सीढ़ियों पे खड़े होकर फिल्म देख रहे थे और उन्होंने जो प्यार देखा पहले, तो उन्होंने एक दो डिलीटेड सीन्स जो थे वो ट्वीट कर दिए कि डिलीटेड सीन्स ऑफ पप्पी जी ये। तो मेरे को सब कह रहे अरे क्यों नहीं रखा वो, तो मेरे दिख रहा है रिएक्शन। मैंने कहा अब मेरी भाई क्लिक कर गया तो अब अलग मामला है, ये क्लिक कर गया ये कैरेक्टर जो है ना, तो अब थोड़ी है कि दोबारा रखवा दो भाई ये है। नहीं हो गया। मैं तो ये भी बोल रहा था ये सब काट दो आपको, अब वो लाडला बन गया वो कैरेक्टर, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाह रहे थे कि ये कट जाए थोड़ा सा, लेकिन वो आनंद जी ने कटने नहीं दिया कुछ, उन्होंने कहा नहीं चुप करके ना वहाँ बैठ जा।
अब क्या चल रहा है अभी, तो बाबा बहुत अच्छी आपने मराठी फिल्म की,
बाबा लाल कप्तान किया था, तो अभी अंग्रेजी मीडियम, अभी अंग्रेजी मीडियम वो किया अभी लंदन में, तो बहुत अच्छा शूट था, बहुत मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो किया है। फिर एक ये दृश्यम की है, क्या कामयाब है छोटी फिल्म, और बाकी जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ कर रहा हूँ मैं अभी एक दो। तो अभी गुनीत पोंगा जी के लिए कुछ किया मैंने, एक शॉर्ट फिल्म कुछ, तो वो है मज़ेदार। और ढूंढ रहा हूँ अच्छे काम की तलाश है ना, कि और बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि स्क्रिप्ट भी अच्छी हो, रोल भी अच्छा हो, पैसा भी अच्छा हो, है ना, तो ये तीनों एक साथ बहुत मुश्किल है अभी। तो कई बार इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, ये है। तो लेकिन एक्टर वेट करता है कि तीनों चीज़ें किस में हो, है ना। हाँ तो बेहतर तरीके से अपना काम भी करें।
आपका अपना सबसे प्रिय किरदार?
मेरा अपना सबसे प्रिय किरदार रज्जू। क्योंकि उसी ने मुझे इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश किया है, और मुझे वो था कि मैं उसे बहुत पहला जब टेक हुआ तो मुहूर्त शॉट है फिल्म का, ओमकारा का, हाँ, तो मुझे अभी भी याद है 13 जनवरी 2006 ब्रिज के ऊपर मुहूर्त शॉट, उसके आगे पीछे कुछ शूट नहीं हुआ, बीच में आता है वो कैसे करना है। और जब वो किया था तो पहला टेक मेरे से बहुत लाउड हुआ क्योंकि भरा हुआ था, हर तरह की इनसिक्योरिटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वहीं पे सैफ है, स्टार्स हैं, सब लोग हैं और एक्ट करना है और ये है मूड, ये है फिल्म के बीच में है, बहुत सारी चीज़ें, क्या जोन रहेगा, क्या कैरेक्टर कहाँ से शेप लेगा, हजार चीज़ें थी वहाँ पे, वो जो रखना आया कुछ कि नहीं यार अब ये नहीं करा। एंड उसके बावजूद उस टेक के बाद विशाल जी ने हल्का से रिक्वेस्ट की, दीपक बहुत बढ़िया था बट एक पिच और डाउन कर देगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक और ये वाला टेक है, दूसरा वाला।
किस किरदार के साथ आपको लगता है पूरी जस्टिस नहीं कर पाया, अब दोबारा करेंगे तो बेहतर करेंगे?
किस किरदार के साथ? यही क्या बोलूं यार, हालांकि वही वही रमेश मजीला वो जो मेरे वो है उसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा। हालांकि पहले तो मेरा वो डेलिबरेट एफर्ट था कि एक्ट नहीं करना, वैसे ही रहना जो है, वो काम भी किया है लेकिन अब लगता है कि नहीं कुछ किया जा सकता उसमें, उसी को कुछ और रूप दिया जा सकता है पार्ट टू में या कुछ ऐसे में जो भी।
एक्टर्स में आपका आदर्श कौन है बचपन से, या तो जो पसंद भी बहुत रहे या हमेशा से योर फेवरेट?
सिनेमा में तो शुरुआत तो बच्चन साहब से ही हुई थी, उसके बाद जब लेकिन जब पैरेलल सिनेमा और उनकी याद आई वो तब ये नसीर साहब, पूरी साहब, पंकज जी, इनसे शुरू हुआ। फिर जब सबका देखने लगा तो उसके बाद बलराज सानी साहब, मैंने कहा अरे बाप रे, तो फिर मैंने कहा बाप रे ये है एक्टर, ये तो तबाही है मतलब। और बड़ा दुख होता है कि लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं आज की जनरेशन उनका, और जबकि इतना बड़ा एक्टर है, आ जाओ देखना है परफॉर्मेंस, तो वो हैं। और थिएटर में विजयराज, थिएटर में जो विजयराज अमेजिंग, उनका अग्नि और बरखा देखा था मैंने, बहुत ही ब्रिलियंट, उनको आज तक उनके हिसाब से रोल नहीं मिले मुझे ये लगता है। और आजकल जो प्रेजेंट जनरेशन है उनमें जो एक एक्टर जिसने इंस्पायर किया, जो आपको यार ये बंदा है, गुलशन देवैया, गुलशन देवैया का आप देखिएगा क्या मर्द को दर्द नहीं होता है, मैं है ना, या कुछ भी हो करता वो गुलशन बहुत ही कमिटेड एक्टर है उस, वो लगा तो ये है अभी फिलहाल।
पुराने जमाने की कोई फिल्म जो आपको लगता है काश ये रोल मैं करता कर पाता आज?
गाइड, गाइड राजू, राजू गाइड, यस वो तो हमेशा वो चाहिए, मतलब ऐसा यार बना दो कोई बना रहा है, हाँ मैं करता हूँ, हाँ हाँ ठीक है फ्री में करूँगा, हाँ कहाँ है हाँ।
उसका कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे आप गाइड का?
गाइड का क्या यार, वही के यू गाइड का था, नहीं डायलॉग तो वही है, यही राजू एक तरफ वही तुम्हारी यादें हैं, क्या कह रहा था, बारिश होगी वो जो उसका वो चल रहा है, ये पब्लिक को बहुत अच्छा मोनोलॉग था जब वो आपस में लगे रहे एंड में ना तीनों, ये क्या सोचना है, नहीं शेड्स, इतनी शेड्स थी उसमें
फिल्म में, बहुत अमेजिंग।
और वो गाना ऊपर से
यहाँ कौन है तेरा
मुसाफिर, बहुत अमेजिंग है पूरा ही, फिर देख सकता हूँ।
अपना जो आप कहते हैं बहुत फिल्में रिजेक्ट करी, कोई रिजेक्शन का जिसका रिग्रेट हुआ हो फिल्म देखने के बाद?
नहीं कोई भी नहीं, डिस्क्रिप्शन से ही आइडिया लग जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, कि वो किस तरह से वो बात कर रहे हैं दीपक। अगर कोई कॉमेडी हो, कॉमेडी से इनकार नहीं है लेकिन कुछ अलग तो हो, है ना। अब
वो पप्पी जी का रिपीट नहीं हो सकता?
हाँ पप्पी जी वाला, पप्पी जी तनु वेड्स मनु के लिए ही रहने दो, बाकी हर जगह वो मत करो अब आप, है ना। कि
सही बात है।
वो है कि मतलब कई बार ये होता था, कई डायरेक्टर्स को मैंने बोला, फिर फ्रेंड्स का रोल, हीरो का फ्रेंड है और उसके साथ रहता है थ्रू आउट, मैंने क्यों रहता है उसके साथ, उसका घर नहीं है क्या है, या वो फंडिंग देता है, वो पैसे देता है, उसके अकाउंट में डालता है क्या, वो राजे का और रजवाड़े का बेटा है क्या, तो नहीं वो कॉलेज फ्रेंड है साथ में, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्यों नहीं रहता, उसकी लाइफ में लड़की क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में क्राइसिस क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में वो क्यों नहीं हो रहा, चेंजेस उतार चढ़ाव क्यों नहीं हो रहे, सिर्फ हीरो की लाइफ में क्यों हो रहे हैं, ये भी तो होगा बंदा कुछ तो तू, हाँ हाँ ये क्या इंसान नहीं है, तो वो जो इक्वालिटी वाला जो थॉट है वो तो है ही नहीं, या तो वो रखो
वो
या
एक
तो
फॉर्मूले को लोग फिर घिसना चाहते
हैं। हाँ वही 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 वही, बहुत कम फिल्में बनती हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एक ही फिल्म में 8-10 कैरेक्टर हों प्रोमिनेंट और बहुत सॉलिड हो, बहुत कम होगा। मतलब बीच में कई बार ये आया कि मैं डायरेक्शन में चला जाता हूँ, हाँ सीरियसली ये है कि डायरेक्शन बहुत ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है,
कोई डायरेक्टर सुनेगा तो मानेगा नहीं आपकी बात,
नहीं एज एन एक्टर, एक्टर के मुकाबले मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मैं डायरेक्शन बहुत, क्योंकि सब लोग बोल चुके हैं कि जो स्टोरी टेलिंग है या जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत खतरनाक है मेरे, मतलब बोलते हैं यार ये क्या डिस्क्राइब करता है सीन को, मतलब ये तो अब डायरेक्शन बहुत बढ़िया करेगा तू, मैंने सबने बोला है। पर फिर ये लगता है कि यार नहीं यार इस रोल में एज एन एक्टर जो आपको काम मिल रहा है, ये जो प्योरिटी वाला फील है ना इसमें एज एन एक्टर, बहुत प्योरिटी वाला फील है। मैं उस फील के लिए रुका हूँ यहाँ पे कि नहीं यार वो क्राइसिस भी मेरा, फेलियर भी मेरा, सक्सेस भी मेरी, ये है वो वाला ना, तो वो बहुत पर्सनल। और रोज़ आप सीख रहे हो कुछ, अपने आप को सुधार रहे हो, अपने आप को सिखा रहे हो कुछ, है ना, तो अपने आप का जो बदल रहे हो कुछ, तो ये प्योरिटी से ही पॉसिबल है। ये वो नहीं है कि मतलब मैं इंटरव्यू से इसलिए वो करता हूँ क्योंकि हर बार लगता है कितना कन्फेस करूँ, इतना है भी कि नहीं है मेरे अंदर, तो वो क्या वैसे भी रहता हूँ तो यार हाँ, बट वो ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, वो नहीं चल सकता तो उनको हमारे जो सुभाष जी हैं, सुभाष के झा जी, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं ना इस तरह का एक्टर हूँ, मैं बस ऐसे करता हूँ और जब मेरा वो अच्छा लगता है, मूड होता है तो ये करता हूँ, अदरवाइज मेरा ना अलग है, मैं नहीं जाते पार्टी शार्टी हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम कहाँ से हो, गढ़वाल से, तो वहाँ पहाड़ी पे चले जाओ ना, वहाँ पहाड़ी पे कमंडल लेके चले जाओ और जब फिल्म आएगी तब आना। मैंने कहा नहीं 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 सर, हाँ नहीं नहीं ये सब बकवास नहीं चलेगी। तो उन्होंने डांट दिया मेरे को, ये तुम इंडस्ट्री का पार्ट हो, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर ओके, तो इससे बच नहीं सकते तुम, तो इसे वो, मैंने कहा ओके सॉरी सर, हाँ 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 नहीं नहीं करूँगा करूँगा कर। सबसे ज़्यादा आप यहाँ अटकते हो कि जब आप अपनी ही कुछ बातों पे बार बार उन बातों को रिपीट करते हो और उसी पे अटके रहते हैं, तो वो सबके साथ होता है।
इतनी ऑनेस्टी मैंने बहुत कम लोगों में, मतलब इतने इंटरव्यूज किए लेकिन इतनी ईमानदारी से जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना बहुत कम देखने को मिली। मेरा फेवरेट को एक्टर,
फेवरेट को एक्टर मैडी भाई, और कौन है, इरफान भाई।
आप किसी हीरोइन का नाम नहीं ले रहे, बड़ा पक्षपात है।
हीरोइन कहाँ है मेरे साथ किसी फिल्म में कोई
फिल्म में तो हीरोइन
है। नहीं एक मिनट हाँ वही तो कह रहा हूँ। अच्छा एक्टर यार दो रख लेते हैं, मैजी भाई और इरफान भाई। तो
अब आगे क्या क्या सपना है?
नहीं कोई सपना, कोई अचानक से बड़ा सपना नहीं है, वही है रोज सुधार। तो वो जो रिपीट करने वाली जो वो है उसी पे और स्ट्रांगली रिपीट करना है, मतलब बार बार रिपीट करना है, वो जो रिपीटेशन है उसे बरकरार रखना है, वो है जो मतलब जो नई आदतों को रिपीट, उसमें रिपीटेशन लाना है, पुरानी आदतों को छोड़ देना है, ये है, ये मेरी प्रैक्टिस है।
बॉक्स ऑफिस सक्सेस या अवार्ड्स क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस, क्योंकि मैं स्टार नहीं हूँ, एक्टर हूँ। अगर मेरी फिल्म बॉक्स अपने आप अवार्ड आ जाए ना, तो ये है, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस। पब्लिक का प्यार चाहिए खूब सारा, पब्लिक मिले हाँ हाँ ये आ गया, ये बंदा आ गया, बस ये है। और ये रिस्पेक्ट चाहिए जो आपने दिया, ये बहुत है मेरे लिए, एक साल की एनर्जी अगले साल की मिल गई मेरे को।
क्या बात है। चलिए तो अगर मैं आज आपसे कहूँ कि जितने भी यहाँ सब लड़के लड़कियाँ छोटे शहरों से आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में कुछ नाम हो जाए, उनको आज अगर दीपक डोबरियाल कुछ कहना चाहेंगे तो आपका मैसेज क्या होगा?
उनको मेरा मैसेज यही होगा कि रियलिटी चेक करें अपना, मतलब जो भी है जो आप सोच रहे हैं, और उस पर ज़्यादा ध्यान अपने काम को दें, हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दें, सबसे पहले आपका काम है, और उसकी बारीकियाँ, उसको इम्प्रूवमेंट उसका, और कन्फ्यूज़न से बचें, और चेक करें कि कोई भी कुछ बोल रहा है वो सही है कि गलत है, अपने लेवल पे चेक करें। किसी भी इंसान को जज मत करें, ये मैं कहूँगा। आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपको गिनाना नहीं है, ये दो चीज़ों से बचें जितना, और बिचिंग से बचना है कि बुराइयाँ वगैरह हो रही है ना, कि कुछ भी ये नहीं निखामखा के वो जो गॉसिप्स और वो जो है शिकायतें और गिनाने वाला वो मत रखे। हो सके तो पेशेंस बहुत कमाल का एक टूल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, कि वो है। और अब फ्रेशनेस बरकरार रखिए, और हर बार यही कि कुछ नयापन लाएंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, सीखते रहिए, वो नयापन बरकरार रहेगा, बस यही है। मतलब ये सब बोल दूँ, मतलब हाँ यार आ जाओ जाओ तो ये रखता है। और कई बार कई दोस्त बोलते हैं कि यार ये बहुत ही उस पर है कि यार तू हर एक को ज्ञान देने में बिल्कुल मेरे मन करता है, इसको बताते हैं समझ गए हाँ, और ऐसा ऐसा तो वो चलता है, वो कोई भी यहाँ से लोखंड वाला तक भी चल रहा है तो मैं बोल देता हूँ क्या क्या करना है, इन इन चीज़ों से बचना, अपने उस पर रहना, ये करना, और क्या क्या लगता है तुम्हारा क्या क्या हुनर है उसको उसको इन्हांस करते रहना, है ना, वो क्वालिटी है, ये है, वो है।
आर यू ओपन टू क्रिटिसिज्म्स?
हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वेलकम कर दूंगा। हाँ यार हाँ बोलो जो बोलना है। हाँ ठीक है ओके। कई बार उसमें नहीं आता, ट्रोलिंग वगैरह जो इसमें चलती थी पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ा इसका, ये क्या बोल रहा तू ना, तो फिर पता चला इसे ट्रोलिंग बोलते हैं। अच्छा ये होती है
ट्रोलिंग, तो एक अलग ही चीज हो गई। हाँ, हाँ, आपके आसपास के लोग कभी कहा यार मजा नहीं आया इस रोल में, सो ठीक है या झटका लगता है अंदर से कि
नहीं? नहीं वो मुझे पहले ही पता चल जाता। कई लोग बोलते हैं ये क्यों ये ऐसी वाहियात फिल्म की, एक तो पर रोल अच्छा था यार उसमें, मैंने कहा यार चुप रहो। हाँ ठीक है। तो
चलिए तीन वेरी क्विकली पर्सनल सवाल, आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं, खुद को क्या कहेंगे?
मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअल हाँ, और रिलीजियस भी हूँ शायद, क्योंकि रिचुअल्स तो सारे वो कैरी होते ही होते हैं। रिचुअल्स भी हूँ लेकिन स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ। हाँ
खाली वक्त में जब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या करना?
एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो खाना बनाता हूँ, गार्डनिंग करता हूँ, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हूँ कॉफ़ी हाउसेज में, और बच्चों के साथ खेलता हूँ, और ये है फिलहाल।
चलिए इन दी एंड दीपक डोबरियाल, अगर एक वर्ड में मैं आपसे कहूँ, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, दुनिया आपको किस तरह से याद रखे?
एज एन एक्टर, कि ये एक्टर था ऐसा, ये चाहिए कि ये एक्टर,
क्या बात है।
हाँ ये उसी ले आया हूँ, कुछ वो नहीं बोलना चाहता, नहीं ये वो उसके लिए आया हूँ तो आया, वो है कि एक इसका सिग्नेचर अलग है ना, कि ये अलग है कुछ, इसका तरीका अलग है, ये अलग जिया, अपने तरह से जिया, वो है।
मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ एक्टर नहीं, एक मतलब बेहतरीन एक्टर नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी है। थैंक यू सो मच दीपक हमसे बात करने के लिए, और कुछ तोहफे हम आपके लिए लेकर आए।
रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा का है क्या, सुनो तो जरा जिंगुर बोले चिकी मिकी रिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, हा 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 ला 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 रा 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 रे रे रा रा टा रे रा रा रे रा रा रे रा 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 रा।